नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। स्टार स्कीमा द कंप्लीट रेफरेंस क्रिस्टोफर एडमसन की डेटा वेयरहाउस और डायमेंशनल मॉडलिंग पर केंद्रित व्यावहारिक संदर्भ पुस्तक है। इसका उद्देश्य केवल स्टार स्कीमा की संरचना बताना नहीं, बल्कि यह स्पष्ट करना है कि विश्लेषणात्मक डेटा के लिए किसी मॉडल को किस तर्क से चुना और विकसित किया जाए। पुस्तक डेटा को व्यावसायिक प्रक्रियाओं, मापों और विश्लेषण के दृष्टिकोणों में व्यवस्थित करने की विधि पर काम करती है। इसमें आधारभूत स्टार और क्यूब से लेकर अनेक फैक्ट टेबल, कॉन्फॉर्म डायमेंशन, स्लो चेंज प्रोसेसिंग, ब्रिज टेबल, स्नैपशॉट और एग्रीगेट तक विषय क्रमबद्ध रूप से आते हैं। एडमसन का दृष्टिकोण डिजाइन निर्णयों के परिणामों पर जोर देता है, इसलिए पाठक किसी एक आरेख की नकल करने के बजाय अलग परिस्थितियों में उपयुक्त संरचना पहचानना सीखता है। यह पुस्तक टूल केंद्रित मार्गदर्शिका नहीं है, यह बिजनेस इंटेलिजेंस ETL और दस्तावेजीकरण की जरूरतों को डेटा मॉडल के मूल सिद्धांतों से जोड़ती है। इस कारण यह नए मॉडलर के लिए सीखने का क्रम और अनुभवी प्रैक्टिशनर के लिए जटिल डिजाइन समस्याओं का संदर्भ दोनों प्रदान करती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले व्यावसायिक प्रक्रिया से फैक्ट टेबल का ग्रेन तय करना। पुस्तक का केंद्रीय सिद्धांत है कि हर फैक्ट टेबल को किसी स्पष्ट व्यावसायिक प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। बिक्री, शिपमेंट, भुगतान या ग्राहक संपर्क जैसी प्रक्रियाएं देखने में जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन उनकी घटनाएं, समय और उपलब्ध माप अलग होते हैं। उन्हें एक ही विशाल फैक्ट टेबल में मिलाने से ग्रेन अर्थात एक पंक्ति किस वास्तविक घटना को दर्शाती है अस्पष्ट हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप मापों की पुनरावृत्ति, गलत योग और ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं जिनका उत्तर मॉडल विश्वसनीय ढंग से नहीं दे सकता। एडमसन प्रत्येक प्रक्रिया के लिए अलग स्टार बनाने की बात रखते हैं, फिर साझा विश्लेषण की जरूरत को कॉन्फॉर्म डायमेंशन से हल करते हैं। उदाहरण के लिए समान ग्राहक, उत्पाद और तिथि डायमेंशन अलग प्रक्रियाओं के तथ्यों को एक तुलनीय संदर्भ दे सकते हैं। यह व्यवस्था ड्रिल अक्रॉस विश्लेषण को संभव बनाती है, जहां रिपोर्ट अलग फैक्ट टेबलों के मापों को एक ही डायमेंशनल संदर्भ में रखती है। पुस्तक का महत्वपूर्ण व्यावहारिक संदेश यह है कि मॉडलिंग की शुरुआत कॉलमों से नहीं, प्रक्रिया और उसके घोषित ग्रेन से होनी चाहिए। ग्रेन पहले तय करने पर यह स्पष्ट होता है कि कौन सा माप वैध है, किस डायमेंशन की जरूरत है और किन तथ्यों को अलग रखना अनिवार्य है। दूसरा, कॉन्फॉर्म डायमेंशन से बढ़ते वेयरहाउस में संगति। अनेक विभागों और प्रक्रियाओं वाला डेटा वेयरहाउस तब उपयोगी बनता है जब अलग डेटा मार्ट एक दूसरे से अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ सके। पुस्तक में कॉन्फॉर्म डायमेंशन इस समस्या का मुख्य डिजाइन उत्तर है। कॉन्फॉर्म डायमेंशन केवल समान नाम वाला कॉलम नहीं है, उसका अर्थ, कुंजी, गुण, वर्गीकरण और उपयोग नियम इतना संगत होना चाहिए कि अलग फैक्ट टेबलों में उसके आधार पर बनी रिपोर्टों की तुलना की जा सके। ग्राहक की परिभाषा, यदि बिक्री में एक और सेवा में दूसरी हो तो कुल ग्राहक, प्रतिधारण या सेवा प्रभाव जैसे विश्लेषण भ्रामक होंगे। एडमसन इसीलिए विषय क्षेत्रों को स्वतंत्र रूप से डिजाइन करने की सुविधा और उद्यम स्तरीय संगति दोनों के बीच संतुलन पर ध्यान देते हैं। साझा डायमेंशन उपयोगी है, पर हर समान दिखने वाली इकाई को जबरन साझा करना उचित नहीं। पहले यह जांचना जरूरी है कि उसके व्यावसायिक अर्थ और परिवर्तन नियम सचमुच समान है या नहीं। पुस्तक कॉन्फॉर्मेंस को केवल तकनीकी पुनः उपयोग नहीं मानती, बल्कि रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता का आधार मानती है। यह दृष्टि क्रमिक विकास में विशेष उपयोगी है, क्योंकि नए स्टार जोड़े जा सकते हैं बिना पुराने विश्लेषण को असंगत किए। इस तरह वेयरहाउस एक बिखरे हुए रिपोर्टिंग संग्रह के बजाय साझा माप और परिभाषाओं वाला विश्लेषणात्मक तंत्र बनता है। तीसरा, डायमेंशन इतिहास, पदानुक्रम और बहुमूल्य संबंधों का डिजाइन। पुस्तक डायमेंशन टेबल को साधारण वर्णनात्मक सूची मानने की गलती से बचाती है। ग्राहक, उत्पाद, संगठन या स्थान की विशेषताएं समय के साथ बदलती है और विश्लेषण को कभी वर्तमान स्थिति तो कभी उस समय की ऐतिहासिक स्थिति चाहिए होती है। स्लो चेंज तकनीकें इसी विरोधी जरूरत को संभालती है। किसी गुण को अधिलिखित करना सरल है, लेकिन तब पुरानी रिपोर्टें नए वर्गीकरण के अनुसार दिखने लग सकती है। दूसरी ओर अलग डायमेंशन पंक्ति बनाकर इतिहास रखना अधिक सटीक हो सकता है, पर लोडिंग और कुंजी प्रबंधन जटिल बनते हैं। पुस्तक यह संकेत देती है कि चुनाव तकनीकी आदत से नहीं, रिपोर्टिंग के अर्थ से होना चाहिए। पदानुक्रम और स्नोफ्लेक संरचनाओं पर चर्चा भी इसी संदर्भ में है। सामान्यतः उपयोग में सरल और क्वेरी अनुकूल डायमेंशन वांछनीय है, पर कुछ पदानुक्रमों में अलग संरचना उचित हो सकती है। बहुमूल्य डायमेंशन और ब्रिज टेबल विशेष रूप से उन स्थितियों के लिए है जहां एक तथ्य या इकाई के कई वैध संबंध हो। ऐसे संबंधों को एकल कॉलम में दबाने या गलत तरीके से डुप्लीकेट करने से डबल काउंटिंग हो सकती है। ब्रिज डिजाइन संबंध को स्पष्ट करता है, लेकिन मापों के योग और भार निर्धारण के नियम भी मांगता है। इसलिए यह भार डेटा की वास्तविक जटिलता को रिपोर्टिंग में सुरक्षित रखने पर केंद्रित है। चौथा, ट्रांजैक्शन, स्नैपशॉट और फैक्टलेस फैक्ट के अलग उपयोग एडमसन फैक्ट टेबल के लिए एक ही पैटर्न को सार्वभौमिक समाधान नहीं मानते। ट्रांजैक्शन फैक्ट टेबल किसी घटना के घटित होने पर एक पंक्ति रखती है, जैसे एक आदेश पंक्ति या भुगतान। यह विस्तृत विश्लेषण और लचीले पुनर्संयोजन के लिए उपयोगी है, लेकिन किसी अवधि के अंत की स्थिति सीधे नहीं दिखाती। पीरियोडिक स्नैपशॉट निश्चित अंतराल पर स्थिति दर्ज करता है, जैसे दैनिक खाता शेष या मासिक इन्वेंट्री। इससे समयावधि के प्रदर्शन और स्थिति के रुझान समझना आसान होता है। अक्यूमुलेटिंग स्नैपशॉट किसी प्रक्रिया की प्रगति को एक ही पंक्ति में कई चरणों और तारीखों के साथ रख सकता है। इसलिए आदेश से वितरण या आवेदन से स्वीकृति जैसी जीवन चक्र प्रक्रियाओं के लिए उपयोगी है। फिर भी इसके अपडेट व्यवहार और कई समानांतर घटनाओं की संभावना को सावधानी से समझना जरूरी है। पुस्तक फैक्टलेस फैक्ट टेबल का भी स्थान स्पष्ट करती है। इनमें संख्यात्मक माप अनिवार्य नहीं होते, क्योंकि इनका उद्देश्य घटना, पात्रता, कवरेज या अनुपस्थिति को दर्ज करना हो सकता है। उदाहरणतः किसी विद्यार्थी की कक्षा उपस्थिति एक संबद्ध घटना है, भले उसमें राशि न हो। अलग फैक्ट प्रकारों की यह तुलना मॉडलर को रिपोर्ट के प्रश्न से संरचना चुनना सिखाती है। मुख्य कसौटी यह है कि पंक्ति किस तथ्य को कहती है और उस पर कौन से गणितीय संचालन वैध है। अंत में एग्रीगेट, डिराइव्ड स्कीमा और BI-EDL अनुकूलन पुस्तक प्रदर्शन को केवल डेटाबेस प्रशासक का बाद का विषय नहीं मानती। जब विस्तृत फैक्ट टेबल बहुत बड़ी हो जाती है, तब सामान्य रिपोर्टों के लिए हर बार मूल स्तर का डेटा पढ़ना महंगा हो सकता है। एग्रीगेट इस समस्या का एक उत्तर है। वे अक्सर पूछे जाने वाले सारांशों को पहले से तैयार रखते हैं, जैसे दिन के बजाय माह और उत्पाद के बजाय श्रेणी स्तर पर बिक्री। लेकिन एग्रीगेट तभी विश्वसनीय है जब उनका ग्रीन स्रोत माप और डायमेंशनल संबंध स्पष्ट हों। अन्यथा उपयोगकर्ता अनजाने में अनुपयुक्त सारांश पर क्वेरी कर सकता है या मापों का गलत अर्थ निकाल सकता है। डिराइव्ड स्कीमा भी विशेष विश्लेषणात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए मूल संरचना से निकले रूपों का विचार देता है। पुस्तक का दृष्टिकोण है कि प्रदर्शन सुधार का लक्ष्य मूल मॉडल की व्यावसायिक स्पष्टता नष्ट करना नहीं होना चाहिए। इसी कारण वह डिजाइन को बिजनेस इंटेलिजेंस और ETL टूलों से जोड़ती है। कुछ टूलों की सीमाएं या व्यवहार मॉडल में समायोजन मांग सकते हैं, पर टूल की सुविधा के लिए तथ्य का अर्थ बदल देना जोखिमपूर्ण है। ETL प्रक्रिया को कुंजियों, इतिहास, डेटा गुणवत्ता और लोड नियमों के अनुरूप होना चाहिए। अंत में दस्तावेजीकरण डिजाइन का अतिरिक्त कार्य नहीं, बल्कि ग्रीन परिभाषाओं और उपयोग सीमाओं को साझा करने का माध्यम है। इससे मॉडल लंबे समय तक समझने योग्य और संचालित रहने योग्य बनता है। निष्कर्ष में स्टार स्कीमा द कंप्लीट रेफरेंस उन डेटा पेशेवरों के लिए सबसे उपयोगी है जो रिपोर्टिंग की तात्कालिक मांग से आगे बढ़कर टिकाऊ एनालिटिक डेटा संरचना बनाना चाहते हैं। डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्ट, डायमेंशनल मॉडलर, बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर, ETL डिजाइनर और इस विषय के गंभीर विद्यार्थी इससे विशेष लाभ ले सकते हैं। शुरुआती पाठक को यह समझ मिलता है कि फैक्ट, डायमेंशन, ग्रीन और स्टार स्कीमा के शब्द केवल परिभाषाएं नहीं, बल्कि रिपोर्ट की शुद्धता निर्धारित करने वाले निर्णय हैं। अनुभवी पाठक को स्लो चेंज, बहुमूल्य संबंध, रिकर्सिव पदानुक्रम, अलग फैक्ट प्रकार और प्रदर्शन जैसे मामलों में व्यवस्थित संदर्भ मिलता है। पुस्तक की व्यावहारिक उपयोगिता इस बात में है कि यह जटिलताओं को छिपाने के बजाय उनके लिए अलग डिजाइन विकल्प बताती है। इसका अंतर केवल स्टार स्कीमा का समर्थन करना नहीं है, यह बताती है कि अनेक स्टार कब आवश्यक है, कॉन्फॉर्मेंस कैसे उद्यम स्तरीय संगति बनाती है और कब मॉडल को BI या ETL की वास्तविक बाधाओं के अनुसार समायोजित करना चाहिए। समान विषय की कई पुस्तकों में सिद्धांत, टूल उपयोग या किसी खास प्लेटफॉर्म पर अधिक जोर हो सकता है। एडमसन की पुस्तक डिजाइन तर्क, व्यापारिक अर्थ और कार्यान्वयन परिणामों को एक ही ढांचे में रखती है, इसलिए यह पढ़ने योग्य क्रमिक पाठ भी है और किसी वास्तविक मॉडलिंग समस्या के समय लौटकर देखने योग्य संदर्भ भी। इसका सबसे स्थायी लाभ यह है कि पाठक आकर्षक दिखने वाले पर अर्थहीन आरेखों से बचकर ऐसी संरचनाएं बना सके जिनमें माप, इतिहास और तुलना विश्वसनीय बने रहे। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं क्रिस्टोफर एडमसन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।